Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Aradesh Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhagavad Bhaktajan, Shvetashvatara Upanishad, Shvetashvatara Rishi Pranita उपनिषद का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। ये वेद के कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत है। वेदों के भाष्यों को अथवा विचारों को देखने से लगता है कि कृष्ण यजुर्वेद के कई शाखा विद्यमान है। अन्य जितने भी उपनिषद है, प्रत्येक उपनिषद के दो तीन एक ऐसा विभाग है, परंतु जब हम इस कृष्ण यजुर्वेद को देखते हैं तो इस कृष्ण यजुर्वेद के अनेक शाखा, काण्वकाष्ठ, तैत्तिरीय, पांच शाखा विद्यमान है। उसमें से ये जो उपनिषद है श्वेताश्वतर उपनिषद, वो शुक्ल नहीं कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखा के अंतर्गत है। तृतीय मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस जगत के जो मूल शक्ति है, कारण है, ऋषियों के मन में सृष्टि के पूर्व से ही यह प्रश्न विद्यमान है कि सृष्टि अगर है तो सृष्टि के स्रष्टा कौन है। अगर ब्रह्म को स्रष्टा के रूप में माना जाए, सृष्टि कार्य को देख करके स्रष्टा को मानने में कष्ट होता है। सृष्टि चूंकि नाशवान है, स्वल्प है, क्षणिक है, भंगुर है, सृष्टा के व्यक्तित्व इस प्रकार के नहीं, अतः इस जगत के सृष्टा ब्रह्म हो सकता है क्या? और मन में अगर थोड़ा बहुत परब्रह्म के बारे में विश्वास भी है तो एक आश्चर्य सा प्रकट किया जा रहा है, क्या इस जगत के सृष्टा ब्रह्म ही है? इसलिए दो तरीके से, दो तरह से प्रश्न उठाया गया। और प्रतिपक्ष के रूप में जो भी उपस्थित रहे, वो ब्रह्म को अस्वीकार करके काल से लेकर के नियति, स्वभाव, यदृच्छा, पुरुष, जीव तक स्वीकार किया। नाना तर्क वितर्क के द्वारा निश्चय हुआ, ये हुआ कि यह सब जो पृथक पृथक रूप से कारणत्वेन प्रतिपन्न किया जा रहा है, ये कारण नहीं है। पूर्व पक्ष ने विचार रखा, अगर प्रत्येक को कारण रूप में स्वीकार कर नहीं सकते हैं तो समूह को स्वीकार करो। इसके पक्ष में सिद्धांत ने उत्तर दिया, भाई जड़ है, जो भी तुम कारण कोटि में रख रहे हो ये सब के सब जड़ है, और जड़ों को चलाने वाला कोई चित धातु, चित सत्ता, चैतन्य वाला होना चाहिए। संयोग हमेशा पर के लिए होता है, अन्य के लिए होता है, दूसरे के लिए होता है। तो ये जो नाना शब्द, नाना पद पदों के पदों की जो समूह है, कारणत्वेन जो जो तुमने रखा, ये सब सबका जो संयोग है, समूह है, ये अन्य के लिए है। इस प्रकार से उन्होंने पूर्व पक्षियों के मत को निरसन करता हुआ कि आप जो जिसको कारण मान रहे वो कारण नहीं है, और मैं जिसको कारण रूप से समझना चाहता हूं, जब कार्य को देखते हैं तो कार्य और कारण में कोई सादृश्यता न होने के कारण उस ब्रह्म को कारण रूप से मन नहीं मानता, स्वीकार कर नहीं सकते। तो फिर प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहता है कि किम कारणम। फिर तो भाई ब्रह्म के कारण कौन है, ये जगत के कारण कौन है, ब्रह्म नहीं है तो और कौन कारण है। अब क्या उपाय है? हम लोग सब कुछ करना चाहते हैं इस दिमाग से ही ना, ब्रेन से। लेकिन एक जगह जाकर कि ये दिमाग भी जो है अपने हाथ उठा लेते हैं कि भाई अब दिमाग देखिए ना, विषयों का जो चिंतन करते हैं, विषय का चिंतन करते करते ऐसा कभी कभी लगता है ना कि बस इस विषय में और दिमाग जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहे भाई। अब विषय चिंतन में ही दिमाग नहीं खपा सकते, दिमाग जो है थक जाता है महाराज, तो ब्रह्म चिंतन में तो क्या ही कहना है। जो फाइनेट है, जो सीमित है, जो अल्प है, उसकी चिंतन आप कर नहीं पा रहे। जो असीमित है, सीमित के द्वारा असीमित को कैसे आप चिंतन कर सकते? क्या उपाय है? तब उन लोगों ने, ऋषियों ने निश्चय किया कि देखो कम से कम सब बाह्य विषयों को छोड़ करके, बाह्य विषय ग्राहक इंद्रियों को छोड़ करके, इंद्रियों के चलाने वाला मन को छोड़ करके, और मन के संशयों को दूर करने वाला बुद्धि, इसको भी कहीं ना कहीं अलग रख करके कुछ निश्चय किया जाए। क्योंकि बाह्य इंद्रिय बाह्य विषयों का ही चिंतन अनुधावन करती है और मन जो है उसको प्रेरित करती रहती है। बुद्धि जो है निश्चय कि उसी में वही सब कुछ है, उसी में सब कुछ है। तो कहीं आवृत्त चक्षु के द्वारा सभी इंद्रियों को समेट करके एक ऐसा समाहित अवस्था को प्राप्त करे, और उस समाहित जन्य जो अनुभव होगा, ऋषियों ने विचार किया कि शायद वो हमारे समस्या का समाधान हल हो सकता है। और तब जाकर के महाराज सारे सत्व रज तम गुणों से उठ करके चित्त को प्रशांत करके वो समाधि में निमग्न हुए, और उस समाधि जन्य जो फल है वो आपके सामने। इसीलिए उस दिन मैंने कहा था उपनिषद मीन क्या, उपनिषद क्या है? उपनिषद अर्थ है ऋषियों के साधना का जो फल है वो आपके हाथ में, बिना परिश्रम के आपको मिल रहा है महाराज, है ना? और क्या। और इसीलिए तो ऋषि ऋण जो बोलते हैं ना, वो अपने ऊपर है, सबके ऊपर ऋषि ऋण है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ा कीजिए, तब जाकर उस ऋण से आप उऋण हो सकते हैं। और ऋण लेकर के कोई शांति से बैठ सकता है? असंभव। तो ये जो चिंतन का फल है भाई, वो उन्होंने आपके समक्ष रखा, और वो फल क्या मिला? ये जो उन्होंने चिंतन किया, किस तत्व का साक्षात्कार किया, ये आज मेरे को नहीं, कल मुझे लग रहा था, ये साक्षात्कार शब्द, ये जितने भी शब्द हम व्यवहार में लाते हैं, शब्द मात्र से ही कोई आकार हम फ्रेम बना लेते हैं। आप लोगों क्या अनुभव है? ऐसा नहीं लगता है? मुझे ऐसा कल बहुत ये हुआ सुबह कि कोई भी आकार हम देते, शब्द व्यवहार में लाते, वो शब्द ही एक आकार को, जैसे साक्षात्कार शब्द सुनते ही ऐसा नहीं, जैसे आपसे मैं मुलाकात किया, तो साक्षात्कार मीन भगवान कहीं बैठे हैं चार हाथ, और उनसे जाकर के मिला, साक्षात्कार किया, ऐसा क्या अनुभव किया? वो यहां विचार ये है कि ये जो, इसीलिए निगूढ़ाम, ये जो कोई प्रकट आकार वाला दृश्य वस्तु ऐसा नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है, जो सभी में है परंतु जिसके उपस्थिति सभी आकार बनने में सामर्थ्य है, परंतु उनको अगर आकार के बिना समझने के प्रयत्न करते तो समझ की बाहर है। शक्ति को, जो शक्ति की बात चर्चा, उस शक्ति को आप कैसे समझेंगे? शक्ति के जो कार्य है उस कार्य के द्वारा शक्ति को आप अनुमान के जरिए जान सकते हैं। महाराज, मैं अभी बोल रहा हूं तो बोलने की शक्ति है, शक्ति तो है, वो जब बोल रहे तो ये बोलने की शक्ति है। ये कार्य को, शब्द उच्चारण आदि को देख करके आप शक्ति का अनुमान कर सकते हैं। तो अभी आप बैठे चुपचाप तो क्या वो शक्ति नहीं है? शक्ति तो है, परंतु आप, आपकी वो शक्ति सुनने में लगा हुआ है। तो अब बताइए, वो शक्ति को अगर किसी एक फॉर्म में, किसी एक आकार में, किसी एक आकृति में आप बांध करके विचार करते हैं तो उस शक्ति को आप सीमित नहीं कर दिए? बिल्कुल सीमित कर दिए, मानो परिच्छिन्न, परिच्छेद कर दिए, कट दिए। तो वो जो अपरिच्छिन्न है उस सत्ता को चिंतन कीजिए, और जब उस अपरिच्छिन्न सत्ता शक्ति को आप सोचेंगे, विचारेंगे, तब आप खुद ही देखिएगा ये सारे जो ऊपर उथला उभरा हुआ जो आकार है वो सब जो है, भाई मॉइस्चर है ना, यहां भी है ना वाष्प, तो वो आपके काम में लगेगा। वाष्प है तो रहने दीजिए, परंतु वही वाष्प को थोड़ा सा ठंडक किया आपने, फ्रिज में आ गया तो महाराज बर्फ, और वही बर्फ को अगर शिवलिंग बना दिया तो वो आकार हो गया कि नहीं? तो असल में क्या है? क्या अगर कोई बोले मॉइस्चर ही मॉइस्चर और कुछ नहीं है, वो भी गलत हो सकता है। अगर कोई बोले नहीं, शिव ही है, ये आकार ही है और कुछ नहीं है। इसलिए कुछ ऐसे संप्रदाय है ना, मैं इसलिए आया, शिव और शंकर में भेद मानते हैं, बड़ा सावधान। हाँ कुछ लोग तो ऐसे देखने को, अरे हम लोग तो एक ही जानते हैं। नहीं है ऐसा, शिव और शंकर में भेद। भाई निर्गुण निराकार जो वो ठीक है, परंतु तो वो हमारे काम के लिए है क्या? वो मॉइस्चर है तो पानी प्यास लगा तो आप हा हा करके पी लो, पानी गिलास जरूरत है? नहीं, प्यास को बुझाने के लिए फॉर्म पानी के रूप में, जल के रूप में वो चाहिए आपको, जितना भी मॉइस्चर क्यों ना हो, वाष्प क्यों ना हो। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक तत्व में, प्रत्येक चीजों में जो शक्ति है, उस शक्ति को चिंतन करो। वही शक्ति एक एक आकार लेकर के, एक एक पैटर्न लेकर के हमारे सामने, मैं खुद भी वो शक्ति का ही एक आकार है और क्या। तो इसलिए वो शक्ति को, आकार को अगर देख करके, प्रकार को देख करके, विकार को देख करके शक्ति के अनुमान कर सकते, परंतु शक्ति कुछ ऐसा चीज नहीं कि ये लो भाई तो शक्ति, 2 किलो शक्ति ले जाओ, ऐसा मिलेगा? परंतु वो शक्ति आपके ब्लड, सारा कोश शेल है कि नहीं? शक्ति ही नहीं है तो ब्लड देने से चलेगा? तो आप, मैं कहने का तात्पर्य कि वो शक्ति को कैसे हम चिंतन कर सकते ना। इसलिए आकार, प्रकार और विकार, ये 3 शब्द वेदांत में कई लोगों ने यूज किया, आचार्यों ने। तो ये आकार, प्रकार और विकार हम देखते हैं, भाई शक्ति है तभी ना हम बोल रहे हैं। हम ये जो अंग भंग कर रहे हैं, भंगी मात जो दे, ये शक्ति का ही प्रकाश है ना। अगर इसमें शक्ति ना हो तो महाराज इसको कितना भी आप लाख कोशिश कर उठेगा हाथ? लकवा अगर मार जाए तो ये हम कोशिश करें तो उठाएगा, ऑर्डर देने पर भी उठेगा ये हाथ? तो कौन है वो जो बस शक्ति है तो आप उठा रहे, अंग की भंगी माप कर रहे, एक नर्तकी नाच रही है, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ये तो खूब बहुत ही बाह्य है। इनर उतना ही काम चल रहा है, इनर को छोड़िए, बाह्य जो कार्य है इसी को आकार प्रकार और विकार विकार विकृति को देख करके आप अनुमान कर सकते कि भाई देखो इनमें शक्ति है। ये जो जगलर है नाना प्रकार के जादू दिखाते देखते हैं और आप जानते हैं कि देखो कैसा शक्ति है कि वो अपने जादू जो है दिखा रहे, वो शक्ति उन्होंने आविष्कार किया। मुझे तो बहुत अभी तो पहले पहले भले ही कुछ लगता होगा क्या पता, परंतु ये श्लोक लोग पढ़ने के बाद बड़ा अच्छा लगा कि भाई हम चिंतन कर सकते हैं शक्ति को, नहीं तो आकार से उठना ही बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस आकार से उठने का एक चिंतन ये उपनिषद दे रहे हैं कि किस रूप से उस निराकार तत्व का चिंतन कर सकते हैं, और इस शक्ति को फिर चिंतन करते करते विशुद्ध सत्व शुद्धि अथवा पर ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त कर सकते। तृतीय मंत्र का उच्चारण पहले करते हैं। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्त्यान्यधितिष्ठति एक ध्यान योग के द्वारा ऋषियों ने अनुभव किया कि वो जो शक्ति है स्वगुणैर निगुढ़ाम अपने गुणों से विशेषणों से आवृत है आच्छादित है, और वो शक्ति किस प्रकार के है, यह एक निखिलानि कारणानि वो संपूर्ण कारणों को आत्मा पर्यंत संपूर्ण कारणों को चलाने वाली है, नियंता के रूप में वही शक्ति। देखिए ना ये जो ब्लड जो नस में जा रहे वो भी तो उनकी तो शक्ति तो चला रहे ना, अरे इसको मैं यहां उठाया इसको धक्का दिया ये तो शक्ति का ठीक है, प्रत्येक सेल टू सेल ये जो ब्लड दौड़ रहे महाराज तो वो किस किस आ रहे कौन है वो, ऐसे टंकी में पानी चढ़ाने के लिए मोटर चला देते हैं तो इसे ये पूरे बिल्डिंग में कौन मोटर चला के रखा कभी भी अगर वो मोटर खराब हो जाए महाराज कितना भी पानी रहे कोई काम, तो ये जो कौन है शक्ति के कैसे हम चिंतन कर सकते ना, प्रत्येक सेल सेल कोश कोश तक शिरा उपशिरा धमनी सब जगह पे जा रहे कौन कौन इन्होंने, और कैसा देखिए भाई कोई रिपेयरिंग नहीं कोई मेंटेनेंस नहीं, वो शक्ति जो है काम चालू रखा ना, एक बिल्डिंग के मशीन मोटर जो है कभी कभी साल में दो साल में एक बार थोड़ा झाड़ फूक करके इस मशीन के इस मोटर के तो कोई महाराज की चल रहा है चल रहा है, तो वो शक्ति के कैसे हम ये कर सकते क्या है उसके आकार, एक बार बता दिया एक बार कर्म में लगा दिए और बस आज तक जो है वो काम चल रहा है महाराज, एक बार ऑर्डर दे दिया, और अभी तो हमारे सोसाइटी में ये प्रेसिडेंट है तो उसका ऑर्डर मानते ही बदल जाओ तो वो प्रेसिडेंट हमारी इस सोसाइटी में बस कितना निश्चिंत मिल गया। ये अगर 10 साल में बदलने वाला प्रेसिडेंट होता तो फिर गड़बड़ हो जाता।